श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम सत्य वचन में हम अध्ययन कर रहे हैं लैव व्यवस्था नामक पुस्तक की, जिसमें धार्मिक पर्वों, अनुष्ठानों, शुद्धता की विधियां, नैतिक आचरणों, सातवें वर्ष और जुबली वर्ष से संबंधित नियमों का वर्णन है।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरा नमस्कार मिले। मैं कुशल पूर्वक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी कुशल होंगे। प्रिय मित्र, परमेश्वर ने फिर से हमें यह सुअवसर दिया है कि हम सब उसके जीवित वचनों में से सीखें। पिछले अध्ययन में हमने इन बिंदुओं पर विचार किया था, याजकों को अपने संबंधियों और दोस्तों में अशुद्ध होने से मना किया जाना, याजकीय कार्य के लिए अयोग्यताएं, बीमार, खान पान और मृतक के द्वारा अशुद्ध होना और लोगों द्वारा लाए गए बलिदान का जांच पड़ताल करना। आज के अध्ययन को आरंभ करने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे अत्यंत दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सके। इस समय जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दीजिए ताकि जब आपके वचन हम सुने या हमारे हृदयों से बातचीत करने पाए, हमें शांति देने पाए, हमें सिखाने पाए। खास करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए जो दुखी और निराश हैं, जो अपने जीवन से चिंतित हैं, परेशान हैं, जो बीमारी हालत में हैं। प्रभु जी, आप उन पर कृपा दृष्टि करें ताकि वे आपके वचन के द्वारा आशीष को पाएं, शारीरिक चंगाई पाएं और आपको महिमा दे सकें। इस समय आप हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्र, आज हम लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 23 अध्याय और उसके 1-14 पद का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है पवित्र छुट्टियां, प्रभावशाली त्योहारें जो सब समय के लिए परमेश्वर का कैलेंडर है। यह परमेश्वर के प्रभावशाली त्योहारों का ध्यान देने योग्य अध्याय है। ये पवित्र छुट्टियां आनंद मनाने का समय था। उनमें से केवल एक, जो प्रायश्चित का महान दिन है, विलाप के लिए था और अन्य सभी आनंद और उत्सव मनाने के लिए था। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि विलाप करने वाले लोग उसके सामने आए। वह तो आनंदित लोगों को चाहता है। ये त्योहार सब समय के लिए परमेश्वर का कैलेंडर उपलब्ध कराता है। लेंज इस तथाकथित पर्व को एक निर्धारित समय कहता है। इसे कभी कभी पूर्व निर्धारित समय अनुवाद किया गया है। शायद पवित्र समय इसका सबसे उचित अनुवाद होगा। इन पर्वों का विस्तृत वर्णन पवित्र शास्त्र में कहीं और दिया गया है। वे यहाँ क्रमानुसार और उद्देश्य के साथ दिए गए हैं। विश्राम दिन जो पहले दिया गया था उसे छोड़कर 7 त्योहार हैं। विश्राम दिन एक त्योहार नहीं था, लेकिन बाद में इसे पर्व में शामिल किया गया क्योंकि यह समय मापक यंत्र के रूप में देखा जाता है। प्रकाशित वाक्य समान संख्या 7 इस अध्याय में प्रमुख स्थान है। विश्राम दिन 7वां दिन है, 7 पर्व हैं। पेंतिकोस्त 7वां सप्ताह का पर्व है। उसके बाद 7वां नया चांद और उसका अगला दिन प्रायश्चित का दिन है और मिलाप का पर्व 7वां महीना पड़ता है। और लय व्यवस्था के 25वें अध्याय में हम 7 विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष को देखेंगे जो संख्या 7 में समायोजित किया गया है। अखमीरी रोटी के 7 दिन थे और मिलाप के पर्व में लोगों को 7 दिन झोपड़ियों में रहना पड़ता था। पवित्र मिलान समारोह के इन दिनों का 2 उद्देश्य था, व्यवहारिक उद्देश्य और भविष्यवाणीत्मक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य का 2 मकसद था, सामाजिक और व्यापारिक। ये पर्व 12 गोत्रों को आराधना और संगति के लिए एकत्रित करते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 16 अध्याय 16 पद के अनुसार इन 3 समयों में आराधना के लिए सभी पुरुषों को यरूशलेम जाना जरूरी था। वे हैं फसह का पर्व, पेंतिकोस्त और झोपड़ी का पर्व। आप देख सकते हैं कि ये इसराइली राष्ट्रों और जातियों को जोड़ने की एक कड़ी है। इसमें देश के सभी भागों से लोग आते हैं और विचारों के साथ साथ व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। इन निर्देशों को मानने में असफल होना इसराइली राष्ट्रों का उत्तर और दक्षिण राज्य में बांटने के अनेक कारणों में से एक कारण था। इनमें से अधिकांश पर्व, विशेष करके फसल कटनी का पर्व, देश के कृषि जीवन में से था। यह विशेष करके प्रथम फसल, पेंतिकोस्त और झोपड़ियों के पर्व के संबंध में सच था। यह परमेश्वर की आराधना को खेत, अंगूर बारी और अंजीर बगीचा के धरातल तक लाता था। परमेश्वर की स्तुति लोगों के कार्यों से जुड़ा था। उनका पसीना उनके लिए श्रद्धा बन गया था। प्रिय मित्र, इन दिनों का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के सभी समय का भविष्यवाणीत्मक तस्वीर देना था। इनमें से प्रत्येक पर्व ने अपनी परिपूर्णता पाई है या भविष्य में पाएंगे। इनमें से अधिकांश ने अपनी परिपूर्णता पाई है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इन पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्र, अब हमें दिन और समय के मानने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने इस सब को पूरा कर दिया है। जैसे हम कुलुसियों के पत्र 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या विश्राम दिनों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। प्रिय मित्र, मुझे यहाँ बताना चाहिए कि सभी पर्व और उत्सव यहाँ शामिल नहीं है। 7 विश्राम वर्ष और जुबली वर्ष लय व्यवस्था के 25 अध्याय में और नए चांद का पर्व गिनती की पुस्तक 28 अध्याय उसके 11 से 15 पद में पाया जाता है। तो आइए अब हम इस अध्याय की रूपरेखा को देखें। पवित्र छुट्टियां अध्याय 23 पहला है, विश्राम दिवस का पवित्र समय 1 से 3 पद। दूसरा, फसह का पवित्र समय 4 से 5 पद। तीसरा, अखमीरी रोटी का पवित्र समय 6 से 8 पद। चौथा, प्रथम फल का पवित्र समय 9 से 14 पद। पांचवा, पेंतिकोस्त का पवित्र समय 15 से 22 पद। छठवां, तुरही का पवित्र समय 23 से 25 पद। सातवां, प्रायश्चित के महान दिन का पवित्र समय 26 से 32 पद। आठवां, तंबू का पवित्र समय 33 से 44 पद। अब आइए हम सबसे पहले विश्राम दिवस के पवित्र समय को देखें। हम लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 1 से 3 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं, 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। प्रिय मित्र, जब हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तब यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर हमेशा अपने निर्देश कुछ खास लोगों को देते हैं। यह देखना रुचिकर होगा कि वह अपना निर्देश किसको देता है। व्यवस्था देने वाला के रूप में वह मूसा से कहता है और मूसा लोगों को बताता है। यद्यपि पर्व में मिलाप वाला तंबू शामिल है, फिर भी यहाँ याचकों का विशेष रूप से जिक्र नहीं किया गया है। लोगों को एक जगह एकत्रित होना था और पर्वों को इसराइल के वार्षिक कैलेंडर में सटीक बैठाना था। हर एक पवित्र समय का विशेष और विचित्र महत्व होता है। इसमें परमेश्वर का इस दुनिया के संबंध में भविष्यवाणीत्मक व्यवहार दिया गया है। प्रत्येक पर्व इस संसार के लिए परमेश्वर के कार्यक्रम का प्रतीक था। जैसे फसह का पर्व का अर्थ मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना और उसकी मृत्यु, अखमीरी रोटी का अर्थ उसकी मृत्यु के कारण मसीह के साथ हमारी सहभागिता, प्रथम फल का अर्थ मसीह का पुनरुत्थान, पेंतिकोस्त का अर्थ कलीसिया की शुरुआत, नरसिंगे का अर्थ इसराइलियों का अपने देश में वापस लाया जाना, प्रायश्चित के महान दिन का अर्थ क्रूस पर यीशु हमारे लिए मारा गया, झोपड़ी का पर्व का अर्थ भविष्य का वह समय जब इसराइली अपने देश में हैं। प्रिय मित्र, साप्ताहिक विश्राम दिन को एक पर्व का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यह मूसा के पहले था और यह सृष्टि के समय से चला आ रहा है। यह इसराइलियों को बार बार दोहराया और याद दिलाया गया है और व्यवस्था विवरण 5 के 15 पद में इसे मानने का एक और कारण दिया गया है। यहाँ लिखा है, और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। मित्रों, जब इसराइली लोग मिस्र में दास थे, उन्हें प्रतिदिन काम करना पड़ता था। यहाँ विश्राम दिन को उनके छुटकारे के साथ जोड़ा गया है। अब जब वे छुड़ाए गए तो उन्हें परमेश्वर के आराधना के लिए विश्राम दिन को अलग करना था, हर परिश्रम और क्रियाओं को बंद करना था। प्रिय मित्र, जब शुरुआती कलीसिया एक साथ एकत्रित होने के लिए सप्ताह के एक दिन को अलग करना चाहिए, तो उन्होंने सप्ताह के पहले दिन रविवार को चुना, क्योंकि वह दिन था जब प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठा। यही वह दिन है जब हम लोगों को पूर्ण छुटकारा दिया गया, जैसे रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रिय मित्र, विश्राम दिन पुरानी सृष्टि की है और हम लोग नई सृष्टि के हैं, जैसे कि 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। सप्ताह के पहले दिन को अलग करने के द्वारा हम प्रभु यीशु का आदर करते हैं। प्रिय मित्र, विश्राम दिन इसराइलियों के लिए एक समय मापक यंत्र था, यह सारे परिश्रम और क्रियाओं की समाप्ति और नए सप्ताह की ओर देखने की बात को कहा गया है, जहां नई सृष्टि होगी। यह एक भविष्यवाणी भी है कि यह छुटकारे की ओर देखता है। प्रथम सृष्टि में मनुष्य ने अपना विश्राम खोया, लेकिन अब छुटकारे के द्वारा उसके लिए विश्राम है, जैसे इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा है, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम पाया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। हमारा विश्राम छुटकारा और सिर्फ छुटकारे के द्वारा है। परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम दिन है, यह क्या है? यह हमारे पापों के क्षमा किए जाने की निश्चयता है। मत्तयि सुसमाचार 11 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मित्रों, विश्राम और छुटकारा विश्राम दिन के दो पहलू हैं। विश्राम दिन एक पर्व का दिन नहीं था, यह सप्ताह की ओर संकेत करता है, न कि साल की ओर। यह एक पर्व नहीं लेकिन एक निर्धारित समय था। प्रिय मित्र, आइए अब हम दूसरी बिंदु फसह का पवित्र समय पर विचार करें। लय व्यवस्था 23 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, फिर यहोवा के पर्व जिन में से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं, पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे। पर्व का वर्णन हमें पहले निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में दिया गया है, लेकिन यह परमेश्वर के कैलेंडर में रखा गया है और यह पद हमें स्पष्ट बताता है कि पर्व सही मायने में फसह के साथ शुरू होता है, न कि विश्राम दिन के साथ। निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 2 पद में परमेश्वर ने कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। यह पवित्र समय मसीह की बलिदान रूपी मृत्यु और लहू की मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे 1 कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। प्रिय मित्र, फसह की उत्पत्ति ऐतिहासिक घटना मिस्र में अंतिम विपत्ति पहलौठे की मृत्यु से हुई। इसराइलियों को निर्देश दिया गया था कि वे मेमने की बलि करें और उसके लहू को उनके दरवाजे के चौखट पर लगाएं। उन्हें घर के अंदर रहना था और मेमने के मांस को आग में भूनकर खाना था। मृत्यु के दूत हर एक दरवाजा से जिसमें लहू का चिन्ह था आगे बढ़ जाता था। जब हम गिनती की पुस्तक के 9वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, हम पाएंगे कि इसराइली जब सीनै पर्वत पर थे तो उन्होंने फसह के पर्व को मनाया। फसह का पर्व यीशु मसीह का अपने शिष्यों के साथ फसह मनाने और नए पर्व प्रभु भोज स्थापना के बाद रात में यीशु के गिरफ्तारी में पूरी हुई। उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 6 पद में वध किया हुआ मेमने को देखते हैं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर के राज्य में फिर से फसह मनाया जाएगा, जैसे कि लुका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। प्रिय मित्र, आइए अब हम तीसरी बिंदु अखमीरी रोटी का पवित्र समय पर विचार करें। लय व्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 6 से 8 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे, उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, और 7वें दिन तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। प्रिय मित्र, यद्यपि यह अलग वर्ष माना गया है, इसका फसा के साथ नजदीकी संबंध है। फसा एक दिन माना जाता था और दूसरा दिन सप्ताह का पहला दिन अखमीरी रोटी का पर्व शुरू होता था। निर्गमन की पुस्तक के 12 अध्याय और उसके 14 से 28 पद के अनुसार इसका ऐतिहासिक उत्पत्ति का सीधा संबंध फसा से है। अखमीरी रोटी फसा के दूसरे दिन से 7 दिन तक खाया जाता था। मत्ती और मरकुस में फसा और अखमीरी रोटी को एक ही पर्व माना गया है। प्रिय मित्र, खमीर यहाँ दूसरे जगह के समान बुराई का प्रतीक है। पहला क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 और 8 के अनुसार अखमीरी रोटी का अर्थ है छुटकारे के आधार पर मसीह के साथ संगति बनाना और इसे विश्वासी के पवित्र चालचलन के द्वारा बनाए रखना है। इस समय कोई भी महत्वहीन कामों को नहीं करना था और उन दिनों में भाग लेने वालों को उनके दैनिक धंधों से विश्राम करना था। उन्हें तो आग के द्वारा बलिदानों को चढ़ाना था, जो होम बलि, भोजन बलि या रोटी के भेंट और पाप बलि की ओर संकेत करता है। अखमीरी रोटी के सप्ताह के पहला और 5वां दिन पवित्र सभा के विशेष दिन थे। प्रिय मित्र, फसा का अर्थ है मसीह का हमारे पापों के लिए मरना। उसके बाद यीशु हमारे लिए मरा। इस तथ्य पर आधारित हमें मसीह के साथ संगति को बनाए नहीं रखना है, बल्कि जैसे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें पापों को अंगीकार के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 8 पद में हमारे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यह दर्शाता है कि यीशु के लहू का मूल्य विश्वासी के उद्धार पाने के बाद भी बना रहता है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें शुद्ध करने में निरंतर लगा रहता है। यही अखमीरी रोटी के पर्व का अर्थ है। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथी बिंदु प्रथम फल के पवित्र समय पर चर्चा करें। लय व्यवस्था 23 अध्याय के 9 से 11 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पुले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। प्रिय मित्र, यह पर्व नहीं मनाया जा सकता था जब तक इसराइल जंगल से बाहर नहीं निकलते और प्रतिज्ञा देश में प्रवेश नहीं करते। जब वे अपने बीज भूमि में बोते और गेहूं के प्रथम बाली को देखते, तो वे पौधे की शाखा को यहाँ वहां देखते और उन प्रत्येक को काटते और उनके पुलिंदा बनाते, उसके बाद उसे उपासना स्थल पर लाते और याजक उनको परमेश्वर के लिए चढ़ाता था। प्रिय मित्र, हमें यह नहीं बताया गया है कि यह ठीक किस दिन में किया गया है। यह अखमीरी रोटी के प्रथम या पर्व के अंतिम दिन में हो सकता है। यह देखना महत्वपूर्ण है कि यह सप्ताह के पहला दिन किया गया था या किसी और दिन में। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मसीह को प्रथम फल कहा गया है, जैसे पहला क्रंथियों की पत्री 15 अध्याय उसके 20 और 23 पद में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है, परंतु हर एक अपने अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। फिर मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 1 में उसके पुनरुत्थान का समय स्पष्ट बताया गया है। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मित्र, सप्ताह के पहले दिन प्रथम फल मसीह यीशु को जिलाया गया और किसी दिन कलिसिया को उसके पुनरुत्थान में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक वह अकेला प्रथम फल है जो महिमामय शरीर में जिलाया गया है, और कलिसिया के उठाए जाने के समय हम सब भी उठाए जाएंगे और मसीह के समान लोग कब्रों में से बाहर निकलेंगे। वह प्रथम फल है और उसके बाद जो मसीह यीशु के हैं उसके आगमन पर जी उठेंगे, जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मरता है तो बहुत फल लाता है। प्रिय मित्र, आप देखिए, पहला फल का भेंट चढ़ाना यह दर्शाता था कि उसके बाद और भी फसल हैं, और यह फसल मसीही लोग हैं। लयव्यवस्था की पुस्तक 23 अध्याय उसके 12 से 14 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपाक के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, और सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घ हीन भर की चौथाई दाख मधु हो, और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले आओ उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बालें, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। प्रिय मित्र, बलिदान के साथ उस दिन उत्सव मनाना शामिल था। कोई भी पाप बलि इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यह मसीह की मृत्यु में शामिल था। पाप की समस्या का अंत किया गया है। ये बलिदान मन भावन सुगंध है, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 के 19 में लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। प्रिय मित्र, यहाँ हमारे लिए एक महिमामय सच्चाई है। नई फसल का आनंद तब तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक यह परमेश्वर के सामने चढ़ाया नहीं गया है। विश्वासियों के लिए मसीह की मृत्यु और मसीह का पुनरुत्थान हमें नया संबंध और आशीष देता है, जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। इसका अर्थ कुछ आदतों में कुछ परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ हम पुराने आदम से हटाए गए हैं और प्रभु यीशु के साथ जोड़े गए हैं। अब हमारा नया उद्देश्य, नया लक्ष्य, नया आनंद और नया जीवन है। यह हमारे पुराने आदत को प्रभावित करेगा ना? वह सब कुछ नया बनाता है। प्रिय मित्र, क्या आज आप एक नई सृष्टि हैं? क्या आपके जीवन को मसीह ने बदल दिया है? यदि नहीं तो आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम मसीह के निकटता में आ सकें और उस उद्धार के आनंद को प्राप्त कर अपने जीवन में शांति पा सकें। आज समय यहीं पर समाप्त होता है। हम पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर से अलग और भटके हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा यह संभव बनाया है कि हम संगति में आ सकते हैं। परमेश्वर ने नया और भरपूरी का जीवन हमें दिया है, और यह यीशु मसीह में है। जिसके जीवन में प्रभु यीशु है, उसके पास जीवन है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी